आणि बरोबर 1 वर्षानंतर पुन्हा महाराज आज या ठिकाणी आलेले आहेत. आपली खरंच इतकी योग्यता नाही आहे की महाराज आपल्या इथे वरचेवर येतील, पण केवळ ही त्यांची अहैतुकी कृपा ही आपल्यावर झालेली आहे आणि महाराज या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांचं या ठिकाणी स्वागत करूया हरि बोल म्हणून. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. अयं तु प्रथमो राज्ञं
अयं तु प्रथमो राज्ञं
पुमान् प्रथयथायशः
पुमान् प्रथयितायशः
भृतुर्नाम महाराजो
भृतुर्नाम महाराजो
भविष्यति पृथुर्श्रवा
भविष्यति पृथुश्रवः.
Of the two, the male will be able to expand his reputation throughout the world. His name will be Prithu. Indeed, he will be the first among kings.
इन दोनों में से जो नर होंगे वो अपने विश्व को अपने यश को विश्व भर में फैला सकेंगे. उनका नाम पृथु होगा और निस्संदेह वो राजाओं में सबसे पहले राजा होंगे.
Purport by his divine grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. There are different types of incarnations of the Supreme Personality of Godhead. In the Shastras it is said that Garuda, the carrier of Lord Vishnu, and Lord Shiva and Ananta are all very powerful incarnations of the Brahman feature of the Lord. Similarly, Satipati, or Indra, the king of heaven, is an incarnation of the lusty feature of the Lord. Aniruddha is an incarnation of the Lord's mind. Similarly, King Prithu is an incarnation of the ruling force of the Lord. Thus, the saintly persons and great sages predicted the future activities of King Prithu, who was already explained as a partial incarnation of a plenary expansion of the Lord.
तात्पर्य, श्री भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं. शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़ जी विष्णु के वाहन, शिव तथा अनंत ये सभी भगवान के ब्रह्म रूप के शक्तिमान अवतार हैं. इसी प्रकार शचीपति इंद्र भगवान के काम रूप के अवतार हैं. अनिरुद्ध भगवान के मन के अवतार हैं. इसी प्रकार राजा पृथु भगवान की शासन शक्ति के अवतार हैं. इस प्रकार साधु पुरुषों तथा ऋषियों ने राजा पृथु के भावी कार्य की भविष्यवाणी कर दी जो भगवान के अंश अवतार रूप थे.
I'm very happy to be with all of you once again in Nigri.
मैं आप सबके साथ फिर से एकत्र होने का अवसर मिला, इस बहुत प्रसन्नता है.
It brings such incredible joy in the heart to see how Krishna has blessed all of you.
ये देखकर अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि कैसे कृष्ण ने आप सबको आशीर्वाद दिया है.
Not so many years ago, Vrindavan Prabhu, Radhesham Prabhu, they would invite me to Gopalacharya Prabhu's family's home, where we would have little kirtans and talks in their living room.
कुछ ही वर्ष पहले वृंदावन प्रभु राधेश्याम प्रभु मुझे गोपालाचार्य प्रभु के घर में आमंत्रित करते थे कीर्तन प्रवचन के लिए.
And that was all we had in Nigri.
और उस समय सिर्फ हमारे पास
कृष्ण. Little by little, their neighbors started taking interest.
धीरे धीरे पड़ोसी भी उसमें रुचि लेने लगे.
And then major breakthrough, we began to have little discourses in the Krishna temple.
फिर कुछ समय बाद श्री कृष्ण मंदिर में प्रवचन होने लगे.
And soon people were becoming more and more excited about Krishna and bhakti. And near the Krishna temple, we had a ground where we'd make little pandal, and some hundreds of people would come.
फिर लोग कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगे और कृष्ण मंदिर के पास में पंडाल में कार्यक्रम होने लगा.
The special feature was the enthusiasm of the people of Nigri for chanting and dancing in kirtan.
और विशेष पहलू जो है वो निगड़ी के भक्तों का उत्साह कीर्तन और नृत्य के लिए.
Sometimes people from other countries would come and they would see the enthusiasm of the people of Nigri and thought this is the best place in the world.
और कई बार विदेश से भी लोग आते और यहाँ के भक्तों का उत्साह देखकर कहते कि ये दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है.
Gradually hundreds and hundreds of people were coming.
और धीरे धीरे फिर सैकड़ों लोग आने लगे.
Then rath yatras began.
फिर रथ यात्रा शुरू हो गई.
And soon thousands of people were coming.
फिर हजारों लोग आने लगे.
And Raghupati Prabhu, Rohini Kumar Prabhu also started taking good interest.
और फिर उसके बाद रघुपति प्रभु रोहिणी कुमार प्रभु भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे.
And then there is this idea to get some land and build a temple.
और फिर बाद में जमीन को प्राप्त करके मंदिर बनाने की योजना आई.
So a little temple was built with a little ashram.
एक छोटा मंदिर और छोटा आश्रम बनाया गया.
With some nice little toilets.
छोटे से टॉयलेट.
Krishnananda Prabhu is becoming very enthusiastic.
बोल रहे कि मैं बहुत उत्साही बन रहा हूँ.
And from this little temple begun from Gopalacharya Prabhu's family's home, little tiny home, soon tens and thousands of Srila Prabhupada's books were being distributed, wonderful festivals, and no one could believe that the people of Nigri wanted to build an actual nice sized temple.
और फिर हजारों पुस्तक वितरण होने लगे और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि निगड़ी के भक्त इतना महान मंदिर का निर्माण करेंगे.
There was much resistance in Mumbai to giving the permission.
पहले बहुत विरोध था बंबई से कि इसको अनुमति देने के लिए.
Where will you get the funds?
आपको पैसे कहां से प्राप्त होंगे?
Who will sustain it?
और कौन उसको पालन करेगा?
The devotees were so enthusiastic.
और भक्त बहुत उत्साही थे.
They were begging, pleading, crying.
और भक्त निवेदन करने लगे, रोने लगे.
They would say, "We don't need funds. We only need Krishna's mercy."
मैंने बताया हमें पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ कृष्ण की कृपा चाहिए.
So that's a difficult argument to defeat.
और इसको पराजित करना बहुत मुश्किल है.
And within a year or two, this wonderful temple was built.
और बस एक दो साल में ये सुंदर मंदिर निर्माण हुआ.
Simply a manifestation of beautiful, of wonderful devotion.
और ये सुंदर भक्ति का प्रकट रूप है.
A place where thousands of people could come at any single time to share the beauty of the path of devotion.
हजारों भक्त एकत्र हो सके और भक्ति की सुंदरता का आदान प्रदान कर सके.
Yesterday we were in Pune.
कल हम पुणे में थे.
When Vrindavan Prabhu also went there.
वृंदावन प्रभु भी वहां गए.
And Radheshyam Prabhu came. after Vrindavan went to the west. And somehow or other, through their incredible efforts, and Krishnananda Prabhu was also there.
Maharaj bata rahe hain ki Vrindavan Prabhu, Radheshyam Prabhu aur main Pune mein bhi the aur unke prayas the.
And there were so many difficulties.
Aur bahut sari kathinaiyan thi.
And somehow or other now, magnificent, beautiful temple, deities, thousands and thousands of devotees.
Aur ab bahut sundar vigrah aur hazaron hazaron bhakt aane lage.
It is so beautiful to see how Srila Prabhupada's his loving, compassionate wish to give pure devotional service to the people of India and the world is being fulfilled and empowered in such a miraculous way.
और ये देखकर प्रसन्नता होती है कि प्रभुपाद जी की दयापूर्ण इच्छा कि सबको कृष्ण भक्ति मिले कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर पूरी हो रही है.
Brahma creates, Vishnu maintains, and Shiva destroys.
ब्रह्मा जी रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी नाश करते हैं.
Brahma is a super empowered jiva who performs the work of creation.
Brahma एक विशेष जीव हैं जो कि सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं.
Shiva is an expansion of the supreme lord who destroys.
शिव जी भगवान के एक विस्तारित स्वरूप हैं जो नाश करते हैं.
But Vishnu is the original supreme personality of God.
लेकिन विष्णु जो हैं वो मूल भगवान हैं.
Only he could maintain.
सिर्फ वही पालन कर सकते हैं.
So that is the most difficult challenge.
वही सबसे बड़ी चुनौती है.
Srila Prabhupada explained it like that. It may be a great challenge to create something.
Srila Prabhupada जी ने समझाया कि कोई चीज की रचना करना ये एक चुनौती है.
It is not so difficult to destroy something.
और नाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं है.
But the real challenge is to maintain.
और लेकिन वास्तविक चुनौती है उसका पालन करना.
Not just to maintain the buildings and the properties.
सिर्फ इमारत को या संपत्ति को बनाए रखना यही नहीं.
That is obviously important because we understand that the buildings and the properties belong to Krishna.
ये तो महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं ये जो इमारत है ये भगवान कृष्ण की संपत्ति है.
If we welcome Krishna into a building, we are, this is yours, my Lord. We are actually making a vow. Not only for ourselves, but for all future generations, to protect and care for the property.
जब हम कृष्ण को बुलाते हैं, तो हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, खाली हमारे नहीं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कि उनकी रक्षा करने के लिए.
But the most important thing to maintain is the enthusiasm, the purity, the dedication of the devotees.
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों का उत्साह और समर्पण की भावना को बनाए रखना.
Maintaining properties is not so difficult.
संपत्ति को बनाए रखना ज्यादा कठिन नहीं है.
Somehow we get money, we can pay people, we can keep things clean, keep the accounts proper. It's difficult, but not so difficult.
पैसे एकत्र करना और हिसाब बनाए रखना ये मुश्किल है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है.
But maintaining the enthusiasm of the devotees, that is the challenge.
लेकिन भक्तों के उत्साह को बनाए रखना ये चुनौती है.
Because that is the foundation by which the very purpose of devotional service is sustained.
ये नींव है जिसके आधार पर जो है भक्ति को बनाए रखा जाता है.
Interestingly, it's not possible to just maintain enthusiasm.
ये बात सही है कि उत्साह को बनाए रखना आसान नहीं है.
If it is not increasing, it is decreasing.
अगर वो बढ़ता नहीं है तो अपने आप कम होने लगता है.
You can't keep it where it is.
आप उसको उसी स्तर पर नहीं बनाए रख सकते.
Because just like the laws of gravity.
जैसे ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है.
The material laws of this world is always trying to push things down.
भौतिक प्रकृति का स्वभाव है सब चीजों को नीचे ले जाना.
Unless there's an effort to go up, you go down.
अगर हम प्रयास नहीं करते ऊपर जाने का तो अपने आप नीचे चले जाते.
Therefore, Srila Prabhupada was so expert in his compassion to present challenge after challenge for us.
इसलिए प्रभुपाद जी बहुत होशियार थे कि कैसे एक के बाद एक चुनौती प्रदान करते.
So that we never become complacent.
जिससे कि हम कभी आलसी नहीं बने.
There is always that motivation to improve.
जिससे कि हमेशा ये भाव रहता है कि कैसे सुधारा जाए.
That enthusiasm to do something wonderful.
और उत्साह रहे जिससे कि हम और कर सके.
And somehow or other, the greatest responsibility we have is to help enthuse each other.
और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना.
This is what devotional culture is.
ये है भक्ति की संस्कृति.
Where we are dedicated not just to maintain things, but to sustain and inspire greater enthusiasm among ourselves.
जैसे न केवल चीजों का हम पालन करें बल्कि आपस में उत्साह को बनाए रखें और बढ़ाते रहें.
And the only way we can enthuse someone else is if we are enthusiastic ourselves.
और हम दूसरों का उत्साह तभी बढ़ा सकते हैं जब हम स्वयं उत्साही हैं.
This is one of the greatest blessings when devotee is enthusiastic.
सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जब एक भक्त उत्साही होता है.
Enthusiasm attracts Krishna from people's hearts.
उत्साह से जो है लोगों के हृदय में कृष्ण को आकर्षित करते हैं.
Enthusiasm is contagious.
और उत्साह जो है ये एक दूसरे के संग में बढ़ता है.
Enthusiasm is a very positive outlook in life.
उत्साह जो है एक जीवन का एक बहुत ही अच्छा पहलू है.
The capacity to see incredible opportunities in every situation.
हर स्थिति में देखना कि कैसे बहुत सारे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं.
And never to be discouraged by inevitable reversals.
और कितने भी विपरीत स्थिति आने पर भी उत्साह नहीं खोना.
If we think that everything is going to go just the way it should, and if it does, I'll be enthusiastic. We should know that our enthusiasm is inevitably doomed.
अगर हम सोचते हैं कि सब चीजें वैसे ही जाएं जैसे मैं चाहता हूं तब मैं उत्साही रहूंगा तो ये जान लेना चाहिए कि वो उत्साह जो है नष्ट हो जाने वाला है.
Because we should expect that on every level there will be setbacks and mistakes.
और हम हर स्तर पे जानना चाहिए कि कोई गलतियां होंगी और बहुत सारे मुश्किलें आएंगी.
Because that's the gravitational force of the way the world works.
और ये दुनिया का ये स्वभाव है गुरुत्वाकर्षण नियम का.
But to be enthusiastic, to not give up hope, to sustain our integrity even when there is temptation and fear, that is real bhakti.
ये सच्ची भक्ति का मतलब है उत्साह को बनाए रखना और कितने भी बाधाएं आने पर उत्साह को खोना नहीं.
This story in Srimad Bhagavatam is very much about that.
श्रीमद् भागवत की ये कथा इसी के संबंधित है.
If we go back into the histories, we find insurmountable reversals transformed into the most incredible blessings.
हम अगर इतिहास में देखें तो बहुत बड़े बड़े विपत्तियां जो हैं बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं.
Wisdom is to transform apparent curses into beautiful blessings.
बुद्धिमता का मतलब यह है कि जो शाप को एक सुंदर आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित करना.
All that's required is we have faith in the supreme compassion of the Lord.
और यही चीज आवश्यक है कि हमको भगवान की दया के ऊपर पूरा विश्वास हो.
And an enthusiasm to please Him under any condition.
और हर स्थिति में उनको प्रसन्न करने का उत्साह बना रहे.
So if we go back a couple chapters of Srimad Bhagavatam, this book that we're reading, we find the story of Dhruva.
हम कुछ अध्याय पहले देखे तो इसमें ध्रुव महाराज की कथा आती है.
He was a 5-year-old boy.
वो 5 वर्ष के बालक थे.
Who was totally insulted by his stepmother.
उनकी सौतेली माँ ने उनकी बेइज्जती कर दी थी.
She tore his heart to shreds with her harsh, cruel words.
उस माता ने अपने कठोर शब्दों से उनके हृदय को नष्ट कर दिया.
Because he was not born from her womb, she made him feel like he was worthless, hopeless, and condemned.
क्योंकि उनका जन्म जो है उनके गर्भ से नहीं हुआ, तो उनको ऐसे ऐसे प्रतीत करा रहे थे कि वो बिल्कुल बेकार हैं.
And his father did not say anything to protect him.
और उनके पिता ने कुछ कहा नहीं उनकी रक्षा करने के लिए.
He felt totally abused by his stepmother and betrayed by his father.
उनको ऐसे लगा कि मेरी माता ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है और पिताजी ने मुझे धोखा दिया है.
He was weeping, crying, trembling beside himself.
वो रो रहे थे और कांप रहे थे अपने आप में.
When his mother Suniti saw his condition, her lotus face shriveled like a lotus flower in the heat of the summer sun.
जब उनकी माता ने शब्द जब सुना तो उनका मुंह ऐसे मुरझा गया जैसे सूर्य के किरणों में कमल का फूल होता है.
There was nothing she could do.
और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी.
Powerless.
कोई शक्ति नहीं.
Dhruva said, I want to get revenge. I want a kingdom greater than my father's.
ध्रुव ने कहा कि मैं बदला लेना चाहता हूं, मुझे मेरे पिता से ज्यादा बड़ी बड़ी संपत्ति मिले.
Suniti said, only God can help you.
उन्होंने बताया सिर्फ भगवान ही मदद कर सकते हैं.
Where is this God?
उन्होंने पूछा ये भगवान कहां पर हैं?
Sages go to the forest to find him.
उन्होंने बताया कि ऋषि जो है जंगल में जाते हैं भगवान की खोज में.
So this 5-year-old child ran from home alone into the deep dark forest.
ये 5 वर्ष के बालक जो हैं अकेले गहरे जंगल में चले गए.
He was so determined.
वो इतने दृढ़ निश्चयी थे.
And when we have that enthusiasm, when we have that determination, the Lord within the heart begins to orchestrate possibilities.
और अगर हमारे अंदर ये उत्साह है तो हृदय में स्थित भगवान वो हमें मदद करते हैं.
So Narada Muni came and taught him the path of devotion.
नारद मुनि आए और उन्होंने उनको भक्ति का मार्ग सिखाया.
How to constantly chant the names of the Lord, remember, meditate on the Lord within the heart.
कैसे भगवान के नामों का स्मरण करना और हृदय में भगवान का ध्यान करना.
And in just a few months he became a perfectly self-realized saint.
और कुछ ही महीनों में वो पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए संत बन गए.
And he came back home and was given the whole kingdom.
और जब वो घर लौट कर आए उनको पूरा राज्य सौंपा गया.
And he ruled with such love and devotion that every citizen considered him their own father.
और इतने प्रेम से उन्होंने राज्य किया कि हर एक व्यक्ति उनको अपने पिता के समान मानता.
So he transformed a curse into the ultimate blessing. He became a pure lover of God who saw God within 6 months.
वो उन्होंने जो है ये कुछ 6 महीने के समय में भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए.
And in the next chapters we find his descendants.
और अगले अध्याय में उनके वंशजों का वर्णन किया गया.
One of them was the king Vena.
उसमें से एक था राजा वेना.
He had royal birth.
उनका बहुत राजसीय जन्म था.
Tremendous power and wealth.
बहुत सारी शक्ति और संपत्ति थी.
And he became intoxicated by his position of being a great prince.
और वो बिल्कुल नशे में मग्न हो गए ये सब राज्य की पोजीशन से.
He thought he could do anything to anyone because of his unique role as the prince.
वो सोचते थे कि मेरी पदवी के कारण मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ.
Instead of seeing the responsibility of his position to protect the citizens on behalf of God, he saw that I could exploit anyone any way I want. It is all mine.
बजाय इसके कि नागरिकों की रक्षा करने के वो सोचने लगे कि मैं किसी भी व्यक्ति का किसी भी समय शोषण कर सकता हूँ.
Responsibility is a very crucial sense of spiritual and social culture.
आध्यात्मिक और सामाजिक संस्कृति का जिम्मेदारी लेना एक महत्वपूर्ण भाग है.
We have a tendency to manipulate even philosophy to justify our ego.
अपने अहंकार को सही सिद्ध करने के लिए हम दर्शन शास्त्र को भी सिद्ध करना चाहते हैं.
In the Western world and actually all over the world, so many people eat meat and justify the killing of animals on the basis of a statement in the Holy Bible.
बहुत से लोग जो है मांस भक्षण करते हैं बाइबल के एक वाक्य के आधार पर.
That God has given man, humans, dominion over all other species.
कि भगवान ने मानव को सब योनि के ऊपर अधिकार दिया है.
So if we have dominion, we could kill them, we can eat them, we could do anything we want with them.
और अगर हमें अधिकार है तो उनको मार सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं.
But we do not understand dominion in that way.
लेकिन हम उसका अधिकार को इस तरीके से नहीं समझ सकते.
Dominion means responsibility.
अधिकार का अर्थ है जिम्मेदारी निभाना.
Responsibility to protect.
रक्षा करने की जिम्मेदारी.
Responsibility to enliven. Responsibility to protect the quality of the life.
उनके जीवन के गुण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी.
A father and mother have dominion over their children, but that doesn't mean that they can exploit them.
माता पिता को बच्चे के ऊपर अधिकार होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे का शोषण कर सकते हैं.
All humanity and all living creatures are God's children, and human beings are meant to protect the sanctity of the opportunities that everyone has.
सारे मानव और सारे जनते ही भगवान के संतान है और सबका कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करना.
So King Silvana, he was so atrocious and he became so powerful that when he was playing with his friends, he would kill them, torture them, because he felt, I have the right.
वेन इतने क्रूर थे कि जब बच्चों के साथ खेलते तो उनके साथ गलत व्यवहार करते और उनको मार भी डालते और सोचते थे कि मेरा ये अधिकार है.
And his father, he was so frustrated because there was nothing he could do with this son of his.
और उनके पिता जो है इतने तकलीफ में आगे सोचने लगे मैं इसके साथ क्या करूं.
So he just in the middle of the night left the kingdom and went to the forest to renounce and seek shelter in the Lord.
और वो उनके पिता जो हैं घर छोड़कर जंगल में चले गए और भगवान का आश्रय ग्रहण किया.
And his father became a paramhamsa, a self-realized soul, a great liberated person, and his liberation was very much because of his son.
और उनके पिता जो हैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए और मुक्ति हो गए, उसका एक मुख्य कारण था कि उनके बेटे के कारण उनको ये मिला.
The most imperfect possible material situation of a king. Can you imagine the embarrassment? A king whose son is cruel, murderous dacoit.
आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी खराब स्थिति है अगर किसी का बेटा जो है वो कोई डाकू हो और मर्डर लोगों का खून करने वाला हो.
There was nothing he could do to stop him.
और उसको रोकने का कोई तरीका नहीं.
So he just left the kingdom out of humiliation and frustration and took shelter of the Lord and perfected the path of liberation.
और उसने लेकिन उस स्थिति में उसने भगवान का आश्रय लिया और पूर्णता को प्राप्त कर लिया.
But meanwhile, Vena took the king, the throne.
तो फिर लेकिन फिर वेना जो है वो राजा बन गए.
And he made laws that no religious activity was allowed except worship of him.
उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं कर सकता सिवाय उनकी स्वयं की पूजा.
He twisted the scriptures according to his own ego, which is very common.
अपने अहंकार के वजह से उन्होंने शास्त्रों में बदल कर दिया जो कि बहुत आम बात हो गई है.
He said according to the scripture the king is representing God.
ने कहा शास्त्र के अनुसार राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है.
आई एम योर किंग.
मैं आपका राजा हूं.
रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट डिफरेंट देन व्हाट वी रिप्रेजेंट.
जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं उससे हम अभिन्न हैं.
देयरफॉर आई एम योर गॉड.
इसलिए मैं आपका भगवान हूं.
एंड एज गॉड आई फॉरबिड यू टू वर्शिप एनीवन बट मी.
और भगवान होने के नाते मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे सिवाय किसी की पूजा नहीं करें.
इफ यू डू यू विल बी प्लंडर्ड टॉर्चर्ड and killed.
अगर आप ऐसे करोगे तो आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा और आपको मार दिया जाएगा.
He punished people if they were pious.
और अच्छे लोगों को वो सजा देते थे.
And he awarded people if they were sinful.
और पापी लोगों को इनाम देते थे.
He was very powerful.
बहुत शक्तिशाली थे.
There was nothing anyone could do.
और कोई कुछ कर नहीं सकता था उनको.
He was a terrible terrorist.
वो एक बड़े आतंकवादी थे.
Who had power and control over society.
जिसको समाज के ऊपर पूरा अधिकार था.
Not only was he himself extremely powerful with mystic siddhis.
न केवल वो शक्तिशाली थे, उनके पास योगिक सिद्धियां थी.
But he had all the armies at his command.
और सारी सेना उनकी आज्ञा के कार्य करती थी.
He was persecuting, subjugating innocent people.
और निर्दोष लोगों को वो तकलीफ दे रहे थे, सिर्फ गलत व्यवहार कर रहे थे.
If you didn't absolutely surrender to whatever he wanted, you die.
अगर आप उनकी आज्ञा का पूरा पालन नहीं करें तो आपको मृत्यु दंड दिया जाता.
This was King Vena.
ये थे राजा वेना.
So this was a serious problem.
ये बहुत गंभीर समस्या है.
And the saintly people, they were coming together. What are we going to do about this?
सब साधु पुरुष एकत्र होकर सोचने लगे कि इसका क्या किया जाए.
He's destroying the sanctity of the world.
ये पूरी दुनिया की पवित्रता को नाश कर रहे हैं.
So they had the powers of God with them.
उनके पास भगवान की शक्ति थी.
And they chanted out of an emergency situation, these Brahmins and sages who are ahimsa, who are non-violent, who are shanti, who are very peaceful, they understand this is an emergency, we have to do something.
Brahman aur sadhu jo ahimsavadi the wo sochne lage ki abhi is sthiti mein kuch karna hoga ye.
So he chanted some mantras, they chanted mantras.
उन्होंने ऐसे कुछ मंत्रों का जाप किया.
And the mantras caused King Vena's heart to stop.
और उस मंत्र कारण वेना का हृदय जो है चलना बंद हो गया.
And he died.
और उसकी मृत्यु हो गई.
हरि बोल.
हरि बोल.
But then what happened is after he died, things got hundreds of times worse.
लेकिन उसकी मृत्यु के बाद स्थिति और खराब हो गई.
Because even though his laws were totally selfish, envious, egoistic and corrupt, at least there was laws.
हालांकि उनके नियम जो है बहुत स्वार्थी और भ्रष्टाचार से भरे हुए थे, कम से कम कुछ नियम तो थे.
But without some strong, you know, administration, then anybody can do anything and there's nothing to restrict them.
और अगर राज्य नहीं हो तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है.
So thieves and criminals were unchecked by anyone.
और चोर और डाकू को कोई रोक नहीं सका.
So the Brahmins and sages were thinking, now what?
ब्राह्मण ऋषि सोच रहे थे अब क्या किया जाए.
We try to solve one problem and our solution has made the original problem even worse.
हमने एक समस्या का हल करने का प्रयास किया और उसके हल से वो समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई.
With all good intentions.
और हमारा इरादा बहुत अच्छा था.
Prahlad Maharaj explained it like this, that unless we have spiritual wisdom, then the solutions to our problems on a material level will often make more difficult problems than the original problem we tried to solve.
Prahlad Maharaj batate hain ki jab koi hum samasya ka hal karne jate hain to wo hal jo hai wo aur zyada samasya badha dete hain.
Have any of you ever had that experience?
Aap mein se kisi ko ye anubhav hua hai kabhi?
Even good intentions, the nature of this world is so implicated, complicated.
ये दुनिया का स्वभाव है वो बहुत ही जटिल है.
But you see, they were not discouraged.
लेकिन वो उत्साह नहीं खोए.
Their enthusiasm wasn't, they didn't give up.
उन्होंने अपने उत्साह को त्यागा नहीं.
They had faith in the inherent grace of the Lord in every situation.
उनको हर स्थिति में भगवान की श्रद्धा, भगवान की कृपा के ऊपर श्रद्धा थी.
They were seeing the potential of light even in the greatest darkness.
सबसे बड़े अंधकार में भी वो प्रकाश की किरण देख रहे थे.
I remember one time, it was the middle of the night. This is some years ago, and I was walking along this forest path. It was winter, there was snow, and it was so dark that I walked off the road. It was just a mud path with ice, and I accidentally walked off the road and fell off a mountain.
मेरे को याद आ रहा है कि कुछ समय पहले अंधेरी रात्रि में मैं चल रहा था, ठंडी का समय था, और गलती से मैं जो है वो रोड से अलग होकर नीचे की तरफ गिर पड़ा.
And I was rolling down this steep mountain.
और ये पर्वत से मैं नीचे गिरता जा रहा था.
Bouncing off trees, going through thorn bushes.
और मैं पेड़ों के पास से गिरते हुए कांटीले झाड़ियों के बीच में से गुजर रहा था.
And I kept rolling and rolling and couldn't see anything and couldn't stop rolling.
और मैं लुढ़कता जा रहा था, मैं रोक नहीं सकता था अपने आप को गिरने से.
Quite a high mountain because I rolled for a long time.
बहुत ऊंचा पर्वत था क्योंकि बहुत देर तक मैं गिरता रहा.
And finally I reached the bottom.
और अंत में पहुंचा नीचे.
And I just my body rolled right into this ice cold stream of water.
और मेरा शरीर जो है एक नहर में प्रवेश किया जहां पर बहुत ठंडा पानी था.
I was soaking wet.
और मैं वहां गीला हो गया.
It was freezing cold.
और बहुत ठंडी थी.
And I couldn't see anything.
मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा.
So I didn't know which way I was supposed to walk.
और मुझे पता नहीं था कि मुझे कहां जाना है.
And wherever I would walk, it would seem like there was a mountain I had to climb, and I didn't know. It was there was no moon at night. It was an amavasya, I think.
उस समय कोई चंद्रमा की किरण नहीं थी, शायद अमावस्या थी, और मुझे पता नहीं चल रहा था कैसे चढ़ना है.
So there was nothing I could do except sit down because I had no idea where I was.
और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं कहां पर हूं.
I just sat down next to this ice cold stream of water, soaking wet, shivering and freezing.
और मैं वहां पर बहुत ठंडे मौसम में वहां पर बैठा था, कांप रहा था.
In the darkness I heard different kind of movement.
और अंधकार में मुझे कुछ हलचल महसूस हुई.
I heard like
मुझे ऐसी आवाजें सुनाई पड़ी.
I was thinking. So I was thinking this might be a poison snake.
मुझे लगा कोई जहरीला सांप होगा.
He probably sees me, but I don't see him.
शायद वो मुझे देख रहा है, मैं नहीं देख रहा.
Then I heard. And I was something was walking and just crushing bushes.
और मुझे दिखाई पड़ा कोई चीज चल रही है और झाड़ियों को नष्ट करते हुए.
Could be a bear, could be a wolf.
हो सकता है वो चीता हो.
I couldn't see.
मैं देख नहीं पा रहा.
And these sounds were really close.
और वो बहुत पास आ रहे.
They sounded closer than Govinda Prabhu was to me.
इतना पास में जितना गोविंद प्रभु.
So all I could do is just chant.
बस मैं और कुछ नहीं कर सकता सिवाय नाम लेने के.
What else do you do?
और क्या कर सकते हैं?
You can't see. There may be things about to kill you, but you can't see it.
हम उस स्थिति में थे कि देख नहीं पा रहे.
So I was just chanting, Hare Krishna,
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare.
But I had a hope. My hope was I knew that the sun would rise eventually.
मुझे आशा थी, वो आशा ये थी कि सूर्य का उदय होगा.
It may be another 6-7 hours away. But I knew that the sun was going to rise, and then when I could see, I could go somewhere to get out. I would climb the mountain.
और मुझे पता था कि हो सकता है 6-7 घंटे लगे, लेकिन सूर्योदय होगा तब मैं रास्ता खोज लूँगा और पर्वत चढ़ पाऊँगा.
Find my way back to the path.
और वापस उस रास्ते पर आ सकूँगा.
So sometimes things seem so dark.
कभी-कभी स्थिति इतनी अंधकारमय दिखाई पड़ती है.
Full of danger.
खतरों से भरे हुए.
But we should always know that Krishna Surya Sam Mayohoy Andhakar. Krishna is like the sun.
हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण जो है सूर्य के समान है.
If we turn to the Lord with love and devotion and faith, the Lord is there to give light.
अगर हम भगवान के प्रति मुड़ते हैं श्रद्धा और भक्ति से तो भगवान है हमें दिशा दिखाने के लिए.
It's just a matter of time.
सिर्फ समय की बात.
And this is the way real problems are solved.
इस तरह से समस्याओं का हल होता है.
When we actually understand that there's light, even in darkness, we know that light is there.
जब हम समझते हैं अंधकार में भी कि प्रकाश है.
And instead of focusing on why is it so dark, we focus on the light is coming.
बजाय इसके कि ये विचार करना इतना अंधकार क्यों है, इस बात पे विचार करना कि प्रकाश आ रहा है.
And how to connect to that light.
और कैसे उस प्रकाश से जुड़ा जाए.
So for thinking how this is so difficult, I remember thinking after some time freezing, I was thinking these are some of the nicest rounds of chanting I've ever had.
और फिर बाद में मैंने सोचा कि मेरे जीवन के सबसे अच्छा जप जो है इस समय पर हुआ है.
I have told you a few years ago I was on an airplane coming to Mumbai.
मैंने आपको एक कहानी बताई कि एक बार मैं मुंबई में आ रहा था एयरप्लेन पर.
Plane from London. There was all these different types of alarms. And they announced emergency landing.
और मैं लंदन से आ रहा था उस समय अनाउंसमेंट हुई कि ये इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली.
They said that we're going to have to land the plane at several hundred miles an hour because the control system of the plane stopped working.
जो प्लेन का जो कंट्रोल सिस्टम है वो कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए हमको ज्यादा गति के साथ जमीन पर आना पड़ेगा.
And they kept playing this alarm about every 5 minutes.
हर 5 मिनट में इस तरह से अलार्म बज रहा था.
They told us we had to put our heads down between our legs.
हमको बताया गया कि अपने सिर को अपने पैरों के बीच में रखो.
And they took the strongest, biggest men and put them near the emergency exits to help people out in case that had to be done.
बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनको इमरजेंसी एग्जिट के पास रखा गया जिससे दूसरों को मदद कर सके.
There happened to be one gentleman who came on the flight to travel with me, and he said, "Well, if I'm going to die, at least we're together."
एक व्यक्ति जो है मेरे साथ में थे, वो बोले कि अगर हम मृत्यु होती हम साथ में हैं.
But then the airline authority said, "You're a strong person. You have to go to the exit."
Airline व्यक्ति ने उससे कहा कि आप शक्तिशाली हो, आपको emergency exit के पास जाना चाहिए.
They didn't ask me to go to the exit.
उन्होंने मुझे नहीं बोला वहाँ जाने के लिए.
But when, as we were, you know, as we were approaching the place we were going to land, there was probably 30 fire engines and ambulances with their fires flashing and people with their hoses out.
और जहाँ पर हम land करने वाले थे वहाँ देखा, वहाँ पे बहुत सारे ambulances थे और पानी के pipes सब तैयार रखे हुए थे.
And I was thinking that nobody is praying for me. Everybody's just thinking I'm going to come on a nice airlines. And I was thinking there's a good chance I'm going to die within the next few minutes.
मैं सोचा था किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है और हो सकता है मेरे कुछ मिनटों में ही मृत्यु हो जाए.
And I started chanting.
और मैं भगवान का नाम लेने लगा.
I wasn't falling asleep.
और मेरे को नींद नहीं आ रही थी.
I wasn't thinking about, oh, this person said that and that person said this and why is it like this.
और मैं ये नहीं सोचा था इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों बोला, ये ऐसे क्यों है, वैसा क्यों है.
It was just Krishna and me. That's all there was anymore. And
बस इस समय सिर्फ कृष्ण थे और मैं था.
Srila Prabhupada. And I was chanting so intensely.
प्रभुपाद और मैं बहुत गहराई के साथ जप कर रहा था.
And I started feeling this is the greatest blessing of my life.
और मैं सोचने लगा ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है.
I feel so close to God.
मैं भगवान के इतने करीब आ गया.
Everything, all the distractions of the world are just stripped away by this crisis.
इस विपत्ति के कारण सारे जो बाधाएं थे वो सब दूर हो गए.
I started offering beautiful prayers for everyone's well-being.
और मैं सबके कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करने लगा.
As I was chanting the holy names.
और मैं भगवान का नाम ले रहा था.
Then suddenly at about 300 miles an hour the plane hit the runway.
और फिर 300 माइल प्रति घंटे की गति से प्लेन जो है जमीन को स्पर्श किया.
We were bouncing like and all the luggage was going when babies were crying and mothers and people were screaming. It was very babies were going and the mothers were going and
fathers were going, ah, and the luggage was going, and the plane was bouncing, and the fire engines were all chasing after us with their... And then there was this smell of burning rubber, and there were sparks flying from the tires.
फिर बच्चे जो है रो रहे थे माताएं रो रही थी और बाद में फायर एम्बुलेंस सब पास में आ रहे थे और सब हमारी तरफ करीब सब आ रहे थे कि अगर मदद की जरूरत हो उसके लिए
quite good So finally the plane stopped and we were in the middle of nowhere in this runway and all about 50 ambulances and fire trucks made a circle around us with their hoses out and with all their emergency kits
aur hamare aas pass jo hai 50 ambulances ghere hue the hame madad karne ke liye
and then they announced that we are still not out of danger because there is still a chance that the plane can explode.
The announcement was ki abhi hum khatre se bahar nahi hain, abhi bhi ye plane explode ho sakta hai.
So that was very exciting update.
To ye sunke laga ki ye to kafi ruchikarak samachar hai.
Until the fire and everything cools off, we can't go near the terminal.
Jab tak ki agni bilkul shant nahi ho jati tab tak hum terminal ke paas nahi ja sakte.
Hare Krishna, I was chanting very nicely.
और मैं बहुत अच्छे तरीके से जप कर रहा था.
And finally, after about a half hour, the plane starts moving.
फिर आधे घंटे बाद वो प्लेन चलने लगा.
And they announced again.
और फिर से घोषणा की गई.
We are sorry for the inconvenience.
ये थोड़ी सी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं.
But these things do happen sometimes in aviation technology.
और ये इस प्रकार की चीजें जो हैं हवाई जहाजों में होती रहती हैं.
But we hope that next time you fly, you choose British Airways.
और हम आशा करते हैं कि अगली बार भी आप हमारे एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज से यात्रा करेंगे.
I felt so close to God during that part of the flight that now I always fly British Airways.
मेरे को इतना करीब अनुभव हुआ भगवान से कि मैं अभी भी यात्रा करता हूं तो हमेशा ब्रिटिश एयरवेज से ही करता हूं.
So we could think that you know this is so terrible I may die.
कुछ लोग सोचते हैं इतना भयानक है मृत्यु आ सकती है.
Or we see the light and the darkness that whether I live or die, this is an opportunity to really, really connect with God.
तो मैं सोच रहा था कि ये वास्तविक अवसर है भगवान के साथ अपने संबंध को बढ़ाने का.
This airplane ride is a serious yoga session.
ये जो airplane जो यात्रा थी वो एक योगा सेशन की तरह होगी.
Sharanagati, right to the heart of taking shelter and surrendering.
शरणागति जो है पूरा हृदय से समर्पित करना.
Patanjali's Yoga Sutras, he describes Ishvara Pranidhanat, which is the culmination, which is to take shelter, to surrender to the Supreme Lord Ishvara.
Patanjali Sutra mein bataya gaya hai ki Ishvara ko pura purn roop se samarpit hona.
This situation right to the essence.
Aur ye sthiti se bilkul saar tattva mein pahunch gaye.
Of course, as the plane was bouncing around, we were doing different kinds of asanas, but you know.
और जब प्लेन ऊपर नीचे हो रहा था, अलग-अलग तरह के आसन भी हम कर रहे थे.
So these Brahmins, they saw that there is an opportunity here.
वो ब्राह्मण ये सोचने लगे ये कोई अवसर है.
And they took the body of King Vena.
और वेना के शरीर को लिया.
And with mantras. They performed some special ritual
aur kuch riti rivaj kiye mantron ke sath
to bring out the divinity and the goodness.
जिससे कि उसके अंदर से दिव्यता और अच्छाई को प्रकट कर सके.
Because every situation has different proportions of negativity and positiveness.
हर चीजों में जो है नकारात्मक सकारात्मक सब चीजें रहती हैं.
And if we could see the potential in every situation, we could do something wonderful.
और हम हर चीज में अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं.
They saw within all the cruelty and envy and ignorance of Vena, there was a potential of something divine in there.
उन्होंने देखा कि वेन की क्रूरता और बुराइयों में भी कोई एक अच्छाई है.
And they focused on that.
और हमने उन्होंने उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया.
And what emerged was Prithu Maharaj.
और क्या प्रकट हुए वो प्रिथु महाराज थे.
Prithu Maharaj and his eternal loving consort and wife Archi.
Prithu Maharaj aur unki patni jiska naam Archi tha.
Prithu Maharaj and Archi, when they appeared, it was really a case of taking the worst scenario and seeing the potential, the opportunity and the hope in it to make it complete blessing of auspiciousness.
तो स्थिति थी कि कैसे खराब से खराब स्थिति को एक अच्छे अवसर के रूप में देखना.
And the great sages and Brahmins, they started to glorify, which is the verse we're reading today, glorifying Prithu as an expansion of the Supreme Lord, the Absolute Truth, the Personality of Godhead.
और बड़े ऋषि मुनि जो है गुणगान करने लगे जो कि आज के श्लोक में है कि भगवान जो प्रिथु महाराज है भगवान के विस्तारित स्वरूप.
Archi is the goddess of fortune.
अर्ची जो है वो स्वयं लक्ष्मी देवी.
They have come to bring about supreme blessings to the world.
पूरी दुनिया के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं.
God has come in his expansion to rule us.
भगवान अपने विस्तारित स्वरूप में आए हैं हमारे ऊपर राज्य करने के लिए.
With love and compassion.
दया और प्रेम के भाव से.
Come to shower the world with grace.
पूरे दुनिया में कृपा प्रदान करने के लिए.
It's a wonderful example.
ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है.
Of how to see goodness in difficulty, and if we have the vision to see it, we could make it happen.
और कैसे मुश्किलों में अच्छाई देखना, और अगर हमारी दृष्टि है तो हम ऐसा कर सकते हैं.
Nobody likes the monsoon rains.
किसी को भी बरसात का मौसम अच्छा नहीं लगता.
It's very inconvenient.
बहुत सारी असुविधाएं होती.
So many diseases like malaria accelerate during the monsoons.
उस मौसम में बहुत सारे मलेरिया की तरह बीमारियां फैलती हैं.
And so wet and so muddy.
और बहुत गीला होता है और मिट्टी से भरा होता है.
And sometimes you can't even go out of your house. It's just deluge of water.
कभी इतनी बरसात हो रही होती है कि घर से बाहर भी नहीं जा सकते.
So we could think, oh, how terrible, what a miserable day.
हम सोच सकते हैं कि कितना खराब दिन है.
Or we could think, now so much wheat and so many flowers and so many vegetables and so many fruits, everything will grow because of the water.
या हम सोच सकते हैं कि अभी बहुत अच्छी सब्जियां और गेहूं और अनाज उगेगा क्योंकि अच्छी बरसात हो रही है.
Is it true?
कैसे ही?
And our beloved Srila Prabhupada, he exemplified this principle so wonderfully.
और हमारे प्रिय श्रीला प्रभुपाद ये इस बात का एक प्रतिमंत उदाहरण है.
When he was on Jaladuta, 70 years old, 38-day boat ride across two oceans and three continents, he had no money, he had nothing, he had heart attacks.
जब प्रभुपाद जी जा रहे थे अमेरिका में 70 वर्ष की उम्र में उनको बहुत तकलीफें थी. रास्ते में दो बार हृदय का दौरा आया था.
Severe seasickness, two heart attacks with no medical assistance.
उनको दो बार हार्ट अटैक आया और उनको मदद करने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं था.
But he was enthusiastic.
लेकिन वो उत्साह बनाए रखे.
Enthusiastic to just do the will of Krishna.
कि कृष्ण की इच्छा को पूरा करना है.
And then there were so many setbacks.
और फिर बाद में इतने सारी कठिनाइयां आईं.
He had death threats.
उनको कईयों को मृत्यु की धमकी दी.
Poverty.
गरीबी.
Whatever he had was stolen.
जो भी था वो चुरा लिया गया था.
He could have gone back to Vrindavan to live in a holy place.
वो चाहते तो वापस वृंदावन लौट सकते थे पवित्र स्थान में रहने के लिए.
But he was enthusiastic because he saw the potential in every situation.
लेकिन वो उत्साहित है क्योंकि वो हर स्थिति में देख रहे थे कि कुछ आशा है.
And what is that potential? The potential of the grace of God.
और वो है भगवान की कृपा.
Nothing can ever take that away from us.
कोई भी चीज हमें इससे दूर नहीं ले जा सकती.
So as a community, wherever maybe we may be from, this is our most important responsibility.
एक समाज के रूप में हम कहीं से भी हों, यही हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है.
Not to blame people for their mistakes.
लोगों को उनके गलतियों के लिए दोषी नहीं ठहराना.
Even the best sincere people make mistakes.
बहुत अच्छे व्यक्ति भी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी गलतियां करते हैं.
But to come together, to actually, as a family, as a community, to learn from our each other's mistakes and to help empower each other with positive enthusiasm.
एक दूसरे के साथ आना और दोनों का एक दूसरे का उत्साह को बढ़ाना.
To serve.
सेवा करने के लिए.
To access Krishna's love.
कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए.
That is all important.
ये महत्वपूर्ण है.
We have to deal with different situations.
हमें हर स्थिति के साथ व्यवहार करना होगा.
But we should deal with them in such a way that the problems make us more united and more strong.
लेकिन ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि इसे समस्या के कारण हम ज्यादा एकत्र हों और ज्यादा शक्तिशाली बने.
You see, Maya will take a problem and do everything she can to use it to divide us and to create all sorts of discouragement and aparads. Offenses.
माया क्या प्रयास करेगी कि समस्या के द्वारा हम सब में विभाजन करेगी और अपराध करवाएगी.
And Krishna will take that same problem and help it to be an impetus for us to come together and come to a higher and more transcendental platform than ever before.
और कृष्ण क्या करते हैं, उसी समस्या के द्वारा हमें एकत्रित करते हैं और ज्यादा ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं.
And we are all, with our free will, have the choice whether we're going to let Maya manipulate this situation and bring us down, divide us, create hatred and envy and gossip, or are we going to let Krishna take this and bring us together to create something wonderful.
ये हमारे पास चयन करने का अवसर है कि चाहे हम चाहें तो कि हम माया हमको विभाजित करे, एक दूसरे में मतभेद पैदा करे, या कृष्ण के द्वारा हम एकत्रित हों और ज्यादा उत्साही बने.
These great sages, they brought the supreme personality of Godhead out of the sinful body of King Vena.
ये ऋषि मुनियों ने राजा वेन के शरीर से स्वयं भगवान को प्रकट करवाया.
That is transcendental vision.
ये दिव्य दृष्टि है.
And that is the lesson for every single one of us.
और वो हम सब के लिए एक सबक है.
In our family life,
हमारे पारिवारिक जीवन में,
in our personal life,
व्यक्तिगत जीवन में,
our health, our mental condition,
हमारी स्थिति, मानसिक अवस्था,
in our community life,
हमारे सामाजिक अवस्था में,
and how we can affect not only our own family, not only our own congregation, not only our whole movement, but affect the whole world.
न केवल हमारा कॉन्ग्रेगेशन और बल्कि समाज, बल्कि पूरी दुनिया ही.
And we can access that grace by taking a humble position.
और ये कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम नम्र स्थिति को स्वीकार करते हैं.
We may be bold, we may be forceful, but it should be with humility.
हम बहादुर भी बहादुरी से कार्य करें लेकिन नम्रता के साथ.
And the willingness to forgive and be tolerant.
और साथ में दूसरों को क्षमा करें और सहन करें.
And they're willing to respect and honor.
और दूसरों को आदर करें.
Because in that state, the situations that come upon us in this world, especially the setbacks, are the perfect arrangements for us to actually take shelter of God's names.
और ये स्थिति आती है इस प्रकार की, वो भगवान के बनाए गए जिससे कि हम उनके नाम का आश्रय ले सकें.
Hare Krishna.
Krishna.
Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare.
And be instruments of positive change.
और हम एक औजार बने जिससे कि अच्छा परिवर्तन हो सके.
of you here in Nigri and Pune. So many reversals have been there. So many internal and external challenges. But somehow or other, you've remained together. And the result is these beautiful temples are coming and this beautiful family of devotees. But be aware, because Maya is going to try to use every situation to destroy the sanctity of our community.
तो सब भक्त जो निगड़ी पुण्य उस जगह से हैं, बहुत सारे आंतरिक और बाहरिक समस्याएं हैं, लेकिन आप सब एकत्रित रहे हैं और ये सावधान रहना चाहिए कि माया प्रयास करेगी हमारे उत्साह को नष्ट करने।
But if instead of blaming, we remain united,
दूसरों को दोष देने के बजाय हम एकत्रित रहें,
to approach these problems with integrity and purity,
और शुद्धता के साथ इन समस्याओं का हल करें,
and unity,
और एकता के
साथ, and wonderful empowerment will come.
और फिर दिव्य तीप प्राप्त हो सकती
है। Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद। We would like to take this opportunity to thank His Holiness Srila Radhanath Swami Maharaj for coming and bestowing His causeless mercy. Actually, just a small comment. Because of the karma, the plane was about to be crashed, but because of your presence, everybody was saved. Same way, by coming here, you are giving us hope in all the difficulties. And all these potential spiritual questions are averted by your coming here. We pray to Radha Govind that you can come here more often, enlighten us and protect us from the crashes of Maya. Thank you.
Hare Krishna. तर पुनश एकदा आपण परमपूज्य राधानाथ महाराजांच्या या ठिकाणी धन्यवाद देऊया. वास्तविक खरोखर आपल्याला ही जी या सुवर्ण संधी मिळालेली आहे, हा जो संघ या ठिकाणी आपल्याला मिळालेला आहे, यासाठी आपली खरंच काही पात्रता नाही आहे, पण केवळ महाराजांची अहैतुकी कृपाच ही श्री गोविंदधाम मंदिरावरती झालेली आहे. तर म्हणून आपण महाराजांना एकदा पुनश हृदयातून धन्यवाद देऊ. आणि आपण निश्चितच ही अपेक्षा करू शकत नाही की महाराज आपल्याला पुन्हा पुन्हा येतील आणि त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील, कारण ते इतके व्यस्त आहेत, पण वेळ काढून ते या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि म्हणून आपलं सर्वांचं हे सौभाग्य आहे, आपण त्यांना धन्यवाद देऊ या ठिकाणी आल्याबद्दल. हरी बोल म्हणून.
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल.
त्यासोबत श्रीमान गॅरी प्रभू हे देखील या ठिकाणी आलेले आहेत. महाराजांचं जे आत्मचरित्र आहे जर्नी होम तृषार्थ पथिक हे आपण सर्वांनी वाचलेलं आहे, आणि त्यामध्ये आपण श्रीमान ग्यारी प्रभूंच्या बद्दल देखील वाचलेलं आहे. तेही या ठिकाणी आलेले आहेत आपल्या सर्वांना विशेष आनंद प्रदान करण्यासाठी. आपण त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत करूया, त्यांना धन्यवाद देऊया. हरी बोल म्हणून.
हरी बोल, हरी बोल,
हरी बोल. परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की.
We also have with us Vijay Prabhu, who is the minister for the distribution of Srila Prabhupada's books for the whole world.
हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि इसके विजय प्रभु हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों के महान वितरक करते रहे.
And also a very loving dear friend.
और मेरे बहुत ही परम मित्र भी हैं.
Let us welcome him. Would you like to say something? You can give Vijay Prabhu a microphone.
Hare Krishna. One thing that always impresses me with Maharaj is he's very grateful.
एक चीज है जो मैं हमेशा देखता हूँ महाराज में कि बहुत कृतज्ञ है.
I think before he begins each class, he always says, I'm very grateful for being here and in your association.
वो शुरुआत में हर एक क्लास में बताते हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपके संग में रहा.
So I just want to say that I'm very grateful to Maharaj for being such an inspiration to me and to so many devotees.
मैं महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने सारे भक्तों के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहे
हैं. I feel myself blessed. He's given such nice guidance to me and to devotees all over the world.
और मेरे को और पूरे दुनिया में भक्तों को इतना सुंदर मार्गदर्शन करने.
He's a great blessing to the Vaishnava community.
और वैष्णव समाज के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है.
So thank you very much, Maharaj.
बहुत बहुत धन्यवाद.
We also have Ananta Prabhu, who is the temple president of Slovenia.
Where is he? Ananta Prabhu, who is Slovenia ke temple president.
He has a PhD, and he's taken in the mood of Radhe Shyam Prabhu. He has taken all of his wonderful gifts that he has been given in the world to apply it to devotional service.
ये राधे श्याम प्रभु की तरह ये भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान है और वो PhD की है इन्होंने और वो ये भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं.
Dr. Ananta, you may speak something, please.
Hare Krishna. I just like to express my thank that I can be with all of you.
मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ.
Such a great inspiration. See so many devotees, enthusiastic devotees, in one place.
और इतने सारे भक्त यहाँ पर एक ही जगह पर एकत्रित हुए.
And I beg your blessing that I will be able to take some drop of this inspiration back to.
और मैं चाहता हूँ कि आप जो आपका जो प्रेरणा है उसका एक बूंद मैं अपने साथ में ले जाऊँ.
Back to the preaching battlefield, to the our country, and try to share all this wonderful experience which I got with all of you.
और ये जो अद्भुत अनुभव जो सब हुए हैं मैं उनको अपने साथ में ले जाके और बांटना चाहता हूँ.
Thank you so much. Hare Krishna.
बहुत धन्यवाद.
हरे हरे हरे. And we also have special guest from Amsterdam, Holland. I don't remember your name though. What is your name? Marika. Can you come in? We met her in Rishikesh at a yoga festival and she so kindly came to spend some time with all of us. Let us welcome her. Much louder, please. Thank you. Gary, would you like to say a few words?
If you want to hear from me.
अगर आपको सुनना चाहते हैं तो मैं बोलना चाहूँगा.
First of all, I want to say that there's something about this wooden temple that really moves me. Unlike most temples in India that are made of stone, I just love this place.
एक चीज से बताना चाहूंगा कि बाकी सब मंदिर जो पत्थर के बने होते हैं ये लकड़ी के होने से मेरे को एक विशेष अनुभव हो रहा है.
But even more moving than the temple is the enthusiasm and devotion of the devotees that come here to worship.
और उससे भी ज्यादा जो है भक्त जो यहाँ पर आते हैं उनका उत्साह और भक्ति ये मुझे प्रभावित कर.
You know, I listened to the theme of Radhana's talk today about turning stressful situations into an opportunity to come closer to God.
मैंने अभी महाराज जी के प्रवचन में सुना कि कैसे कठिनाई की स्थिति जो है वो हमें भगवान के करीब ले आती है.
And I'd like to share a little story from the journey home with you, if you don't mind.
मैं जो journey home से जो है एक ऐसी घटना का वर्णन करूँगा.
At the beginning of our great journey, We were just two young 19-year-old boys out to see the world for the first time.
हमारी यात्रा के शुरुआत में हम दोनों 19 वर्ष के नवयुवक थे, पहली बार दुनिया को देखने के लिए निकले थे.
And actually there was three of us.
वास्तव में हम तीन थे.
Another young man from America whose name was Frank.
और एक फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति थे जो भी अमेरिका से ही थे.
We were so excited to be in Luxembourg in Europe, thousands of miles from home.
हम इतने प्रसन्न थे, यूरोप में हजारों मील दूर घर से निकले हुए थे.
And on the first day of our trip, Frank went into the little tent we were staying in.
और पहले दिन जो है फ्रैंक उस टेंट में गए जहां पर हम रह रहे थे.
And ran out greatly agitated.
और बाहर निकले बहुत ही विचलित थे.
And informed Radhanath and myself that we'd been robbed and we were now practically broke with no money at all.
उन्होंने बताया कि हमारा सारा धन चुरा लिया गया और हमारे पास कुछ भी नहीं है.
He was in a great panic.
वो एक बहुत दुखी अवस्था में थे.
And he said, since he was our benefactor, he was the one who was going to support us, we must all go home tomorrow.
क्योंकि वो ही सब खर्चा दे रहे थे तो कहने लगे अभी हमें यहाँ से वापस घर जाना पड़ेगा.
This was just the beginning of our journey and we were so disappointed to hear these words.
ये तो हमारी यात्रा की शुरुआत थी और इन शब्दों को सुनके हम बहुत निराश हो गए.
And so I looked at Radhanath Swami and I saw something in his eyes.
और मैंने राधानाथ स्वामी की ओर देखा और उनकी आंखों में कुछ देखा.
That told me, you know what, Gary? Maybe Frank's going home, but you and I are staying.
और हम बस ऐसे कह रहे थे कि शायद फ्रैंक तो वापस चले जाएंगे लेकिन हम दोनों साथ में रहेंगे.
Normally, Radhanath is not the most forceful man on the planet, but his eyes were fiery and very convincing that day.
वैसे राधानाथ स्वामी बहुत फोर्सफुल नहीं होते, लेकिन उस दिन उनकी आंखें बहुत उत्साह से भरी हुई थी.
He wasn't going to let this opportunity for our great journey end on any kind of misfortune, like just being broke.
वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ पैसे चुरा जाने के कारण ये यात्रा को रोक दिया जाए.
And so without a word, I knew that Radhanath and I weren't going home tomorrow.
तो बिना कुछ बोले हमें पता था कि हम दोनों वापस नहीं जाने वाले.
This is an example of how Radhanath turned a misfortune and negative situation into an opportunity to continue his search for deeper meanings in life.
ये एक उदाहरण है कि कैसे विपत्ति आने पर भी राधानाथ स्वामी महाराज ने उसको ऐसे एक अच्छा अवसर बना दिया आगे बढ़ने के लिए.
And it was to become the theme of our travels from that day on.
और उस दिन से जो है वो मुख्य विषय बन गया हमारे आगे चलने का.
No matter how difficult the situation appeared, Radhanath always found a way of turning it into an adventure and an opportunity, and he never let it affect our journey or our state of mind.
और चाहे कितनी भी कठिनाई हो उससे महाराज जी अपनी यात्रा को या मन की अवस्था को प्रभावित होने नहीं देते थे.
If we couldn't afford hotels, we slept in cornfields.
और अगर हमको होटल के लिए पैसा नहीं था तो हम खेत में सो जाते थे.
If we had no money, we gave blood or played or formed a little band and begged for money.
चाहे अगर हम पैसे नहीं देते थे कुछ हम बजा के कुछ पैसे प्राप्त कर लेते थे.
But always with a joyful heart and a smile on our face, Radhanath taught me that any situation can be an opportunity to bless God.
लेकिन हमेशा आनंद से राधानाथ स्वामी मुझे सिखाया कि हर एक चीज जो है भगवान का आशीर्वाद हो सकते हैं.
And you know, after, for those of you who read the book, after Radhanath's amazing journey to India and all the hardships he encountered, he finally got to the Indian border.
आपने सब किताबें पढ़ा होगा कि सारी कठिनाइयों के बाद वो भारतीय बॉर्डर में पहुंचे.
And they wouldn't let him in because he still had no money.
उनको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि उनके पास कुछ पैसे नहीं थे.
Even that didn't deter him. He was steadfast in refusing to leave that frontier border.
उनके उसके बावजूद वो दृढ़ निश्चय रहे और उन्होंने बॉर्डर को छोड़ा नहीं, वापस नहीं गए.
And finally, when the border guards changed, a beautiful Sikh man allowed Radhanath to go into India.
और बाद में जब वो ड्यूटी बदल गई तो एक बहुत सुंदर सिख सरदार ने उनको अंदर आने दिया.
And Radhanath promised this man that someday he would do something good for your country.
और राधानाथ महाराज ने वचन दिया था कि एक दिन मैं इस देश के लिए कुछ महान करूंगा.
When I watched Radhanath today conducting programs, I realized he's done some wonderful things for this country.
और अभी मैं देखता हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने वास्तव में देश के लिए कुछ महान किया है
and for the world.
और पूरे विश्व के लिए
the hospital, all the beautiful temples, the orphanage, the school. Radhanath's life is a living example of devotion and service.
राधानाथ महाराज जी का जीवन जो है अस्पताल और ऑर्फनेज मंदिर से पता चलता है कि इनका जीवन जो है भक्ति से भरा हुआ है
And so, it's still the greatest honor of my life to be able to follow Radhanath around not only Europe but now India.
और अब मेरा सौभाग्य है कि मैं राधानाथ महाराज के साथ न केवल यूरोप में बल्कि भारत में भी घूम सकता
And also, I want to thank all of you for the warm hospitality and kind reception you've given us at this temple. And it's an experience I'll never forget that I'll take home with me in my heart forever.
और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा स्वागत और आतिथ्य दिखाया और ये अनुभव जो है मैं अपने साथ में लेकर जाऊँगा.
And so thank you, devotees. Thank you, Radhanath Swami. And I love this place.
सारे भक्तों को राधानाथ महाराज को बहुत धन्यवाद और मुझे ये स्थान बहुत ही प्रिय है.
We'll have kirtan first.
अभी सब लोग खड़े हो जाएंगे कीर्तन के लिए.